मेरे ख्याल में माह मुबारक रमज़ान का सबसे अहम, यानी अगर हमें शुरुआत करनी है यकीनन
जी
दुआओं से करनी चाहिए, लेकिन
जी
अगला मरहला जो होता है एक मुनासिब ग़िज़ा। इसमें बाज़ लोगों का ख्याल होता है कि इतना खा लो कि शाम तक फिर ज़रूरत ही ना पड़े,
जी
और पानी भी इतना पियो। क्या ये सारी चीज़ें शाम तक बाकी भी रहती हैं जिसमें या नहीं?
बाकी उस सूरत में रहेंगी कि जब हम उसको एक अपने बैलेंस डाइट के तौर पे लें, जितना हमें लेनी चाहिए, मतलब अपने जिस्म को देखकर। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी कि इस्लाम ने सहरी को हमारे लिए रहमत करार दिया है, मगर
बिल्कुल
हम लोग अपनी कुछ आदात की वजह से इसको अपने ऊपर जहमत कर लेते
जहमत
हैं
कर चुके हैं जी।
और अपने अपने इस रहमत से इस्तफादा हासिल नहीं करते। तो इसीलिए डॉक्टर्स का कहना है कि सहरी की ग़िज़ा जो है वो इफ्तार की ग़िज़ा से ज़्यादा हमारे जिस्म पे तासीर रखती है, क्योंकि वो सहरी में जो भी हम ग़िज़ाइत लेते हैं वो हमारे पूरे दिन दिन के रोज़मर्रा के जो काम करते हैं उसके लिए हमें मुफीद साबित होती हैं। तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें सहरी के लिए कहा, 12 हदीसों में आया है कि सहरी करनी चाहिए, चाहे वो एक खजूर ही क्यों ना हो। ये तो हमारा मज़हबी पहलू था। अगर हम जिस्मानी पहलू पे देखें तो हम ये देखते हैं कि सहरी के वक्त हम जो जो भी खाना खाते हैं वो पूरे दिन में हमें काम आती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छी ग़िज़ा लें। अब अच्छी ग़िज़ा से मायने क्या है? जैसे आपने अभी बोला कि अच्छी ग़िज़ा का मतलब हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, ज़्यादा ज़्यादा हैवी चीज़ें खा लें जो कि हमारे पेट में देर तक रहें और हमें भूख ना लगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो हम लोग आजकल सबसे ज़्यादा जो तली हुई चीज़ें खाते हैं, जिसको हम हैवी कहते हैं, कि हमारे जिस्म में रहती हैं, मगर उसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ भी होती है। जैसे सर का दर्द बहुत होता है, पूरा दिन हम लोग सुस्त रहते हैं, थकावट बहुत महसूस होती है, उसके अलावा कभी कभार हमें डिहाइड्रेशन या तेजाबियत वगैरह भी देखने में आती है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये जो तली हुई चीज़ें जो हम लोग स्पेशली ये पाकिस्तान और इंडिया में बहुत खाई
बहुत
जाती हैं,
ज़्यादा
बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, तो वो हमें कम करनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि जब हम तली हुई चीज़ें अपने खाना शुरू करते हैं, तो क्योंकि एक अपनी लिमिट से ज़्यादा, अपनी हद से ज़्यादा जब तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारे जो जिस्म में हार्मोनल चेंजेस होती हैं और हमारा जिस्म जो है वो जो तली हुई चीज़ें, वो जो ग़िज़ाइयत को स्टोरेज फॉर्म में ले जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में आई हुई होती हैं, तो वो हमें ग़िज़ाइयत नहीं देती हैं, वो हमें स्टोर का हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें मतलब वज़न का बढ़ना जो रमज़ान में देखा जाता है कि वज़न बढ़ जाता है, मगर हमें ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, पूरा दिन हम थके थके रहते हैं और हमें एनर्जी नहीं मिलती है।
अच्छा डॉक्टर साहब, हम बाज़ लोग कहते हैं कि गोश्त आदमी को ज़्यादा खाना
जी
चाहिए क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और
जी
शाम तक इंसान को होता है, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं उसे प्यास बहुत लगती है,
जी
तो क्या किया जाए?
तो हमें चाहिए कि हम सारी चीज़ें एक मिकदार में खाएं, ना ज़्यादा गोश्त खाएं और ना ज़्यादा दालें खाएं, मतलब क्योंकि गोश्त के अंदर प्रोटीन्स वगैरह की तादाद काफ़ी हद तक मौजूद होती है और हमें प्रोटीन पूरे दिन में ज़रूरी होता है। तो हमें चाहिए कि हर चीज़ को, मतलब जो भी हम खाएं उस पर हम देख लें कि उसके अंदर कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने विटामिन हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, और हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मिकदार में खाना
अंदाज़ा
चाहिए,
लगा लें उसका।
अंदाज़ा लगाया जाए और इसमें गौर व फिक्र की जाए, सिर्फ पराठे या इस तरह तली हुई चीज़ें खाने से ना किया जाए, क्योंकि इससे आपको भूख ज़्यादा लगती है और जल्दी भूख लगना शुरू हो जाती है और आप थकान वगैरह ज़्यादा होती है। अगर आप हल्की चीज़ ग़िज़ा खाएंगे और उसमें अपनी देखेंगे कि सारी चीज़ें आपके जिस्म में जो जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें, क्योंकि सहरी के वक्त जो हम खाते हैं वो पूरा दिन हमें साथ देती है उसकी सारी उसकी चीज़ें, तो हमें चाहिए कि इससे कार्बोहाइड्रेट्स हमें, जैसे मैंने बोला, खाना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज़ों में मौजूद होते हैं? जैसे गंदम है, रोटी है, इन चीज़ों में खाना चाहिए। अगर हम रोटी को पराठे की उसमें खा रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ों में हम लोग तली हुई चीज़ें ना खाएं, मतलब थोड़ा सा तेल ले, मगर ये नहीं कि बिल्कुल तेल ख़त्म कर दे, मगर वो एक हद में उस, और बेहतर है कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चावल, दालें, इन सब चीज़ों से, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को डॉक्टर्स जो है एनर्जी बूस्ट कहते हैं। एनर्जी बूस्ट का मतलब यह है कि वो काफ़ी देर तक आपके जिस्म में, पेट में मौजूद रहेंगी और आपको पूरे दिन तवानाई का एहसास रहेगा, जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और आप ज़्यादा थकावट महसूस नहीं करेंगे और अपने ऊपर भारी भी नहीं महसूस करेंगे। उसके अलावा प्रोटीन, विटामिन भी खाने ज़रूरी हैं, जो हम लोग को सब्जियों और फलों से मिलते हैं, और अंडे, दही वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। दूध वगैरह जिस तरह हम लोग काफ़ी हद तक करते भी हैं, जैसे सहरी में लस्सी वगैरह की सूरत में, तो ये पूरे रमज़ान हमारी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत रखते हैं, तो इससे हमें दूध दही का इस्तेमाल काफ़ी करना चाहिए। इसके अलावा जब मैंने फलों की और सब्जियों की बात की, तो उसमें हमें फ़ाइबर्स लेने चाहिए, फाइबर और हरी सब्ज़ियाँ। उसमें ये होता है कि जो आजकल हमारे रमज़ान में हमें देखा जाता है कि कब्ज़ की शिकायत बहुत महसूस होती है, और काफ़ी लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें कब्ज़ है, तो उसमें चाहिए कि हमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, फाइबर्स वाली उसकी इस्तेमाल करें, और जैसे आजकल बहुत गर्मी वगैरह है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम फ्लूइड्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, और अपनी जैसे चाय और कॉफ़ी को छोड़ कर और ड्रिंक्स को सारी छोड़ कर हम ऐसी फ्लूइड्स में आ जैसे फलों के जूस में कि उस चीज़ों का इस्तेमाल करें। उससे होता यह है कि जो चाय कॉफ़ी और ड्रिंक्स में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमें यूरिनेशन का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी करती हैं,
यानी खुसन जो पहली दफ़ा रोज़ा रख रहे हैं उनके लिए बहुत मसाइल पेश आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वो करती है। तो बच्चों के लिए एक तो अट्रैक्टिव होना चाहिए बहुत कुछ, उसके लिए क्या किया जाए, किस तरह की ग़िज़ा बच्चों को खुसूसन जो पहली दुख रहे हैं पहले खुसूसन चंद दिन में उनके लिए क्या किया जाए?
उनके लिए पहले उनको ये सारी चीज़ समझाई जाए कि क्या चीज़ किस लिए बेहतर होगी। तो उनको चाहिए कि मतलब जो उनके पसंदीदा खाने हैं उनमें ही इसी तरह से तवानाई रखी जाए। जैसे बच्चों को जैसे वो फ्रेंच टोस्ट वगैरह बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो हम पराठों की जगह फ्रेंच टोस्ट उनको दे दें, या अगर ऑमलेट वगैरह वो किसी तरह का पसंद करते हैं तो उस तरह से उन्हें ऑमलेट वगैरह दे दें, और जो फल उनको पसंद है उन वो फल दे दें। अगर से जूस वगैरह वो नहीं पीते या दूध जैसे बच्चे बिल्कुल नहीं पीते तो उनको मिल्क शेक की सूरत में किसी तरह से उनको दें ताकि वो पूरा रोज़ा आराम से गुजार सकें और किसी मतलब परेशानी में उतर लेना।
तकरीबन 8 घंटे के अंदर वो जो खाना हम लोगों ने सुबह को लिया होता है जिस शक्ल में भी वो हज़म हो जाता है, तो बदन अपनी एनर्जी किस तरह से हासिल करता है, निज़ाम इन्हज़ाम में क्या तब्दीलियाँ आ रही होती हैं?
जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि 8 घंटे के अंदर सारा मतलब तमन्नाई ले लेता है और जो भी खाना होता है हम ख़त्म कर लेते हैं। कुछ खाने ऐसे हैं जो 8 घंटे से पहले भी ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा कि आप सहरी में वो ग़ज़ाएँ लें जो 8 घंटे से भी ज़्यादा चले। तो जैसे तली हुई अज़ा वगैरह है जिसको मैंने कहा कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से फ़ौरन बॉडी उसको स्टोर करने लगता है, वो स्टोरेज फॉर्म में आ जाती है, तो वो फिर तवानाई नहीं देती है और वो 8 घंटे के 2-3 घंटे बाद ही तवानाई देना ख़त्म कर देती है और उसके बाद हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि इस तरह चीज़ें ना लें। दूसरी, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जब काफ़ी अच्छी गजाइत ली मगर वो भी 8-9 घंटे से ज़्यादा नहीं रहती है पेट के अंदर, तो उसके बाद जब वो 8-9 घंटे के बाद ख़त्म हो जा शुरू होती है तो फिर जैसे उधर से एनर्जी लेता है जो आपने मतलब पूरे साल जो आपकी स्टोरेज है जो आपका मोटापा आपने जमा करके रखा हुआ है या चिकनाई जो आपके जिस्म के अंदर है तो वो पिघलना शुरू हो जाती है जिस तरह से, और जिस तरह जो हम कहते हैं कि ये एक जिस्म में आपके लिए एक रहमत है ये माह रमज़ान, जिसमें जब आप भूखे रहते हैं तो जो इजाफी हमारे अंदर चर्बी है वो पिघलना शुरू होती है, उधर से फिर तवानाई लेना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर हमें बाकी पूरे साल के लिए हमें जो जगह मिल जाती है या जिस तरह से खून की जो वो नालियाँ होती हैं उसके अंदर चिकनाई वगैरह फंस जाती है पूरी जब हम ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं, तो जब उधर से जब तवानाई ख़त्म हो जाएगी तो फिर वहाँ वगैरह से लेना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में कमी देखने में आती है, हार्ट अटैक का रेट कम होता है, जो एम्बुलाए वो बने हुए होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ हमें फ़वाद मिलते हैं।
ये तो हम लोगों ने आम जितने यानी आम तौर से जो होता है वो हम लोगों ने उसके हवाले से बात की। अब अगर मिसाल के तौर पर जो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है वो किसी ख़ास एक्टिविटी में जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है उसको किस तरह की ग़िज़ा लेनी चाहिए सुबह को?
उसको अगर जैसे रमज़ान में भी वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दे, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो मसाइल देखने में आते हैं, तो उनको चाहिए कि वो फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और जैसे चाय कॉफ़ी वगैरह बिल्कुल ख़त्म करके और सारे फ्रूट्स वगैरह जिसके अंदर फाइबर्स होते हैं जैसे माल्टा वगैरह है इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उससे फिर आपके जिस्म में पानी की कमी का जो कमी होती है वो पूरी हो जाती है।